आप सभी दोस्तों को आपके दोस्त प्रशांत मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। हमें पता है कि आप सभी लोग बहुत बेसब्री के साथ एक थी अनु के अगले भाग का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, एक थी अनु कहानी छाया अग्रवाल जी की कलम से निकला हुआ वो शाहकार है जिसकी चर्चा दूर दूर तक पहुंच चुकी है। अभी तक इस कहानी में आप सभी ने देखा, अनुप्रिया और आदित्य दोनों साहित्यकार मित्र हैं। अनुप्रिया और आदित्य की सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है, लेकिन कई बार फोन पर बातचीत हुई है और कई बार आदित्य ने जो है अनुप्रिया को राह दिखाई है। कहीं ना कहीं दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम का अंकुर फूटा है। अभी दो बार की बातचीत से ये बातें निकलकर सामने आई हैं। कल की कहानी जो थी उसमें फोन पर बातचीत हुई है और आगे दोनों ने मुलाकात का समय मुकर्रर किया है। अब आगे प्रेम की सुखद स्पंदन और भावों के पदार्पण को दिल की दीवारों के भीतर जाने से रोक पाना असंभव है, मगर नियति भी नकाब ओढ़ लेने में समर्थन में है। अनुप्रिया ने बेड की ड्रॉर से दवाई निकाली है और एक साथ मुट्ठी भर दवाइयों को खा लिया है। भले ही दवाइयां ज्यादा हों, जो आम आदमी के लिए खाना कठिन हो, मगर अनु के लिए तो रोज की बात है। उसने रमा को आवाज लगाई, रमा, रमा, लगता है सो गई है। अनुप्रिया ने घड़ी की तरफ देखा, 11:30 बज गए। अरे बाप रे, उसने मेरा खाने के लिए इंतजार किया होगा और बेचारी बिना खाए ही सो गई होगी, जाकर देखती हूं। अनु उठी है, अगले ही पल लड़खड़ाई, कमजोरी की वजह से उसको चक्कर आ गया है। उसने खुद को संभाल लिया है। सुबह आंख देर से खुली, उठते ही तकिए के पास पड़ा मोबाइल चेक किया, आदित्य सर का गुड मॉर्निंग का मैसेज पड़ा है। जवाब में उसने गुड मॉर्निंग के साथ एक स्माइली का इमोजी भी भेज दिया है। वाह, पलक झपकते ही फूल का इमोजी आ गया है, कमाल है सर, आप ऑनलाइन तो थे नहीं, फिर ये जादू। आपकी सर्विस का भी जवाब नहीं, वो मुस्कुरा उठी। सुबह सुबह उसका मूड एकदम फ्रेश हो गया है, बावजूद इसके कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। पिछले 2 सप्ताह से लगातार डायलिसिस हो रहा है, पहले 2 सप्ताह में एक बार होता था, अब हालात यह हैं कि दिन में 2 बार होने लगा है। क्रिएटिनाइन लेवल 13-14 के आसपास ही रहता है। हां, यह जरूर है कि डायलिसिस के बाद कुछ समय के लिए 9 या 10 हो जाता है, पर फिर वही डायलिसिस का पूरा इंतजाम घर में ही है। रमा एक अच्छी इंसान के साथ साथ उसकी नर्स भी है, बड़ी कुशलता से वो सभी काम किया करती है, इसीलिए रमा से उसका विशेष लगाव है। वो उसकी नौकरानी भी है, सहेली भी है और साथी भी। रमा ने भी कभी सेवा टहल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वो अनुप्रिया के सभी काम पूरी लगन और निष्ठा से करती है। बदले में इतना प्यार और विश्वास उसे अपने घर में भी कभी नहीं मिला जितना अनुप्रिया उससे करती है। यही कारण है कि वो कभी कभी अनुप्रिया से नाराज भी हो जाती है और एक मां की तरह जबरदस्ती करके अनु को खाना और दवाइयां खिलाती है। नानुकुर करके अनु को उसकी बात माननी ही पड़ती है। डॉक्टर के अनुसार स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, दवा या डायलिसिस का असर ना के बराबर हो रहा है। ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालात बद से बदतर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसका अकेलापन। पति की उपेक्षा और उसका बेऔलाद होना उसकी बीमारी में कोढ़ में खाज की तरह है। सुना तो यह भी गया है कि उसके पति ने पंजाब में दूसरा घर बसा लिया है और इसीलिए वो महीने में 1 या 2 बार ही यहां आते हैं, पर यह बात पूछने की हिम्मत रमा को कभी नहीं हुई और ना ही अनुप्रिया ने इसका कोई जिक्र किया। अनुप्रिया के अंदर अपने अधिकारों को ना पाने का आक्रोश अक्सर बिलखता और फिर सहम कर शांत हो जाता है। रमा कभी नहीं जान पाई कि अनुप्रिया के भीतर से कितनी कमजोरी है। उसने हमेशा अनुप्रिया को फौलाद की तरह मजबूत ही देखा। जिंदा दिली से जीना उसने उसी से सीखा था, पर बगैर खाद भी पानी के पौधा कब तक हरा रहेगा, इस बात की चिंता रमा को अक्सर सताती है। साथ ही यह भी कि अगर अनुप्रिया दीदी को कुछ हो गया तो वो कैसे और कहां रहेगी। अनुप्रिया की बीमारी की खबर आदित्य को नहीं है। उसने कभी नहीं चाहा कि यह बात उनकी दोस्ती के बीच आए। आज काफी दिन बाद आदित्य का फोन आया है। वो चाह कर भी लंबी बातचीत नहीं कर पाई। फूलती हुई सांसों पर नियंत्रण टूट ना जाए, इस डर के चलते बातचीत का सिलसिला कम हो चला है। मगर नदी के ठहराव का संघर्ष वो खुद कर रही है, और ये भी कि कहीं ये कालजयी अपराध तो नहीं बन जाएगा। अस्तित्व और स्वाभिमान की टीस ने जब भी पंख फड़फड़ाए हैं, वो उन्हें अपने संयम से कतरती गई है। मगर आदित्य ने जब से जीवन दायिनी वायु का वेग दिया, वही पंख उड़ान भरने के लिए मचलने लगे। उनका भाव विह्वल सानिध्य कहीं उसे कमजोर तो नहीं कर रहा। उनके मूक प्रणय निवेदन ने आकार ले लिया तो प्रश्नों के कोहरे ने उसे विश्लेषणात्मक बना दिया है। समय आस की गलियों से होकर रफ्तार पकड़ता रहा। आज 15 अक्टूबर है, अनु का जन्मदिन। आदित्य अपने वायदे के अनुसार बुलंदशहर आ चुके हैं। एक बड़ा सा बुके और मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो ऑटो कर सीधे उसके घर पहुंचे हैं, खुद से बातें करते हुए। अनु मेरी प्यारी दोस्त, मैं आ रहा हूं, आज मैं भी बहुत उत्साहित हूं। इन बरसों में मैं तुम्हें गहराई से जान चुका हूं, तुम बहुत अच्छी और सच्ची हो। निश्चित ही तुम्हारी कहानी भी बहुत ही अच्छी बन रही होगी। तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगी और मैं बताऊंगा कि मेरी कहानी की नायिका कितनी बहादुर है। हम कहानी पर खूब चर्चा करेंगे, आज पूरा दिन हम साथ रहेंगे। अगर तुम चाहोगी तो मैं जानता हूं तुम्हारा परिवार है, पति है, पता नहीं कितना वक्त दे पाओगी तुम मुझे। खैर जितना भी है मुझे खुशी है, पूरे 4 बरस के बाद हम मिल रहे हैं। तुम मुझे पहचान तो लोगी ना, वैसे मैं बिल्कुल नहीं बदला हूं। और तुम भी नहीं बदली होगी। वैसे भी ये वक्त इतना लंबा भी नहीं है कोई खास बदलाव आए। ऑटो के ब्रेक के साथ ही आदित्य की तंद्रा टूटी है। नेम प्लेट देखकर उन्होंने घंटी को बजाया है। अंदर से जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला वो रमा ही हो सकती है। आप आदित्य सर हो ना? हां मैं। आइए आइए, अंदर आइए। सुसज्जित सा ड्राइंग रूम जहां हर चीज करीने से सजी हुई है। आधुनिकता के नाम पर एक दो चीजों को छोड़कर पूरी सजावट एंटिक थीम पर है। वाह 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 अनु, तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह निकली। शास्त्रीय संगीत सुनना और लेखन का जुनून तो था ही हमारा, लेकिन अपनी इस पसंद का जिक्र तुमने कभी नहीं किया। चलो आज हमें एक विषय और मिला बात करने के लिए। आदित्य आगे बढ़े और घुसते ही सामने की बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी, जिस पर ताजे फूलों का हार लटक रहा था, जिसे देखते ही आदित्य के हाथ से छूटकर बुके नीचे गिर गया। वो घबराए हुए हैं, उन्होंने फिर से उस तस्वीर को देखा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अनु अनु, तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती हो। अनु ये कैसे और कब हुआ ये? आदित्य निराश और हताश से खड़े रह गए हैं। ढलते हुए सूरज की चंद रश्मियां भी यकायक आंखों से विलीन हो गई हैं। भरे हुए नैनों की धुंधलाहट में देखा है कि रमा पानी लेकर आई है, उसके हाथ में कुछ और भी है। लीजिए सर, ये दीदी की कहानी की पांडुलिपि है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि कहते कहते फफक पड़ी रमा। आदित्य कुछ बोल ही नहीं पाए हैं, बस अनुप्रिया की उस अमानत को उठाकर अपने करीब कर लिया। अनु अनु कहाँ हो तुम? मैं क्यों उस दिन तुम्हारे इशारे को नहीं समझ पाया? तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं ना मिली तो मैं ही नहीं समझा। अब कैसे समझाऊंगा खुद को? अनु, मैं तुम्हारी सांसों को इस किताब में सुन रहा हूं और हमेशा सुनता रहूंगा। ये धड़कती हुई किताब हमेशा तुम्हें जिंदा रखेगी। पर एक दोस्त को धोखा देकर तुमने अच्छा नहीं किया दोस्त। और फिर उन्होंने जेब से कलम निकालकर उस पर लिखा, एक थी अनु। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइएगा। कल फिर एक नई कहानी लेकर के आप सबके सामने आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर, खुश रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, गुनगुनाते रहें। धन्यवाद।